ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय निजामती सेवा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से स्वीकृत। राष्ट्रीय सभा सदस्य भगवती न्यौपानी को किया गया संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पद पर नियुक्त। सैफ्रुबेसी रसुआ गढ़ी सड़क खंड का लगभग 90% मरम्मत कार्य हुआ पूरा। और भारत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की हुई मौत और 19 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में संघीय निजामती सेवा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकृत हो गया। बैठक में संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने विधेयक पर हुए सैद्धांतिक चर्चा में उठे सवालों के जवाब देते हुए बताया कि संहिता के क्रियान्वयन के दौरान समयबद्ध परिणाम उन्मुख और जनहितैषी सार्वजनिक सेवा प्रवाह का उद्देश्य इस विधेयक में रखा गया है। संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि प्रदेश और स्थानीय तह पर कर्मचारियों के चयन और प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करते हुए नागरिक हितैषी सेवा प्रवाह के लिए ये विधेयक केंद्रित है। इसी तरह बैठक में प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त जल स्रोत विधेयक 2081 को धारावार चर्चा के लिए विधायन व्यवस्थापन समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने रसुआ जिले में आई बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशुली नदी के साथ साथ नुआकोट और धादिंग जिले की बूढ़ी गंडकी नदी के आसपास के निवासियों पर प्रभाव डालने की जानकारी दी। ऊर्जा मंत्री खड़का ने सांसदों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द संचालन में लाने का काम किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री खड़का ने कहा कि आने वाले दिनों में हेमताल फटने से बाढ़ आने की संभावना अधिक है, इसलिए इसके जोखिम को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक प्रविधि अनुकूल सक्रिय और प्रभावी बनाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने सरकार का ध्यान समसामयिक मुद्दों की ओर आकर्षित कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक श्रावण 6 गते मंगलवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सार्वजनिक लेखा समिति की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट 2082 पेश की गई। वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए समिति के अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल ने कहा कि राज्य की आर्थिक सामाजिक और भौतिक गतिविधियों को नियमित कर सुशासन स्थापित करने के लिए समिति ने नेपाल सरकार और संबंधित निकायों को निर्देश दिए हैं और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की है। अध्यक्ष पोखरेल ने बताया कि समिति ने महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को उच्च प्राथमिकता देकर चर्चा की है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकारी निकायों को पत्र भेजा है। इसी बैठक में वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक 2081 पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि ये विधेयक बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगा। इसी प्रकार प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में जहाज संचालन तथा प्रबंधन विधेयक 2081 पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अलावा सभामुख देवराज घिमिरे ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा आर्थिक वर्ष 2082-83 के सेवा और कार्यों के लिए संघीय संचित कोष से धनराशि आवंटन और व्यय करने संबंधी विधेयक, नेपाल सरकार के आर्थिक प्रस्ताव को लागू करने संबंधी विधेयक और राष्ट्रीय ऋण उठाने के अधिकार संबंधी विधेयक के प्रमाणीकरण की सूचना देते हुए राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पढ़कर सुनाया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार नियंत्रण, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के उद्धार, राहत और घायलों के इलाज जैसे समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। सांसदों ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने, बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के लिए राहत की व्यवस्था करने और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। वहीं विजिट वीजा मामले की जांच के लिए संसदीय विशेष समिति या उच्च न्यायिक समिति गठित करने की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसदों ने आज भी बैठक का बहिष्कार किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 7 गते बुधवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भगवती न्योपाने को संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पद पर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर न्योपाने को मंत्री पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराई द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में दी गई है। इससे पहले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय की 14वीं बैठक में अगले आर्थिक वर्ष के लिए 1,78,93,00,000 रूपये का बजट स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री एवं कुलाधिपति केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉ पुष्कर बहादुर पाल द्वारा प्रस्तुत बजट और कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। इसी तरह पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभा की 15वीं बैठक ने आगामी आर्थिक वर्ष के लिए 3,19,46,00,000 का बजट स्वीकृत किया है। इसी तरह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की 41वीं सभा ने अगले आर्थिक वर्ष के लिए 1,70,14,30,000 रूपये का बजट स्वीकृत किया है। मध्य प्रदेश के जिलों में इस बार पर्याप्त वर्षा न होने से बेहद कम धान की रोपाई हुई है। पानी की कमी के कारण रोपे गए धान भी सूखने लगा है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। आषाढ़ माह के अंत तक मध्य प्रदेश के जिलों में केवल 35% धान की रोपाई हो पाई है। स्याप्रवेशी रसुआगढ़ी खंड के क्षतिग्रस्त राजमार्ग का लगभग 90% मरम्मत कार्य पूरा हुआ है। राजमार्ग सड़क सुधार परियोजना प्रमुख खड़ग लाल श्रेष्ठ ने बताया कि तिब्बत की ओर से बहने वाली लहंदे खोला में आषाढ़ 24 को आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए स्याप्रवेशी रसुआगढ़ी सड़क खंड की मरम्मत का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। कंचनपुर में जहरीले मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 सदस्य बीमार हो गए हैं। दोधारा चांदनी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित कालागढ़ के 66 वर्षीय कालू सुनार समेत उनके परिवार के 5 सदस्य जहरीले मशरूम खाने से प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी सागर बोहरा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि डोडा के पोंडा में एक्सीडेंट हुआ है। वहीं दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने बताया है कि हर संभव मदद की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय निजामती सेवा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से स्वीकृत। राष्ट्रीय सभा सदस्य भगवती न्योपाने को किया गया संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री पद पर नियुक्त। स्याफ्रुवेसी रसुआगढ़ी सड़क खंड का लगभग 90% मरम्मत कार्य हुआ पूरा और भारत के जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की हुई मौत और 19 लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।